मेरे नौजवान दोस्तों नमस्कार। फ्रेंड्स, मुख्य विषय के अंतर्गत मैं आज आप सबसे सिविल सर्विस की भूमिका इस विषय पर कुछ बातें करूंगा, लेकिन आइए पहले कुछ दूसरी खबरों को देख लेते हैं। सबसे पहले मैं एक बात आप सबको स्पष्ट करना चाहूंगा कि कल शायद मैंने मेडिकल स्टूडेंट्स के लिए जिस शपथ की व्यवस्था की गई है उसमें सुश्रुत का नाम ले लिया था, सुश्रुत शपथ। दरअसल वो सुश्रुत शपथ न हो करके वो चरक शपथ है, चरक शपथ। प्लीज इसे आप करेक्ट कर लें। दोस्तों, आपको मालूम है कि आज पृथ्वी दिवस है, पृथ्वी दिवस, अर्थ डे। और आपको यह भी बहुत अच्छे तरीके से मालूम है कि किस तरीके से आपके सिविल सर्विस एग्जामिनेशन में जो एनवायरमेंट से जुड़े हुए प्रश्न हैं उनकी संख्या लगातार बढ़ती चली जा रही है, प्री में भी और मेंस में भी। और यहां तक आप देखें कि जब भी इंटरनेशनल फोरम पर बातें होती हैं, आपस में सम्मेलन होते हैं, तो उनमें भी लगातार किस तरीके से इस पर्यावरण को बचाया जाए, जिसे दूसरे शब्दों में आप ग्लोबल वार्मिंग कह सकते हैं, लगातार बातें हो रही हैं और पूरी दुनिया इसको लेकर चिंतित है। पृथ्वी दिवस, इसकी शुरुआत हुए लगभग लगभग 50 साल हो गए, 1970 से इसकी शुरुआत हुई थी, लेकिन आप देखिए कि हम जो पृथ्वी का विनाश कर रहे हैं उस पर अभी तक रोक नहीं लगा सके हैं। यहां मैं अपने ऑनलाइन स्टूडेंट्स को विशेष रूप से बताना चाहूंगा कि एक लेक्चर आपको प्रोवाइड किया गया है जिसमें भारतीय दर्शन ने पर्यावरण को कितना महत्व दिया है उस पर बड़े विस्तार के साथ और बड़े व्यावहारिक स्तर पर ऐतिहासिक संदर्भों के रूप में बात की गई है। प्लीज आप सब उसे बहुत ध्यान से पढ़ें और वह निबंध में भी आपके बहुत ज्यादा काम आ सकता है। फ्रेंड, जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो ये है इस बार के जनरल स्टडीज की दृष्टि से पृथ्वी दिवस को लेकर के, कि इस बार जो थीम रखी गई है इस पृथ्वी दिवस की वो है इन्वेस्ट इन आवर प्लैनेट। यानी कि हमारा ये जो पृथ्वी नामक ग्रह है इसमें आप ज्यादा से ज्यादा निवेश करें। जब हम कह रहे हैं ज्यादा से ज्यादा निवेश करें तो उसका मतलब क्या है? मतलब यह है कि कोशिश करें कि पृथ्वी किस तरीके से बच सकती है और उन उपायों पर जो खर्च करना पड़ता हो वह खर्च करें। हालांकि ये बातें बहुत पहले से भी कही जा रही हैं, लेकिन आप ये मान करके चलिए कि जब इस तरह की बातें होती हैं और दिवस मनाए जाते हैं तो कहीं ना कहीं इनका चेतना पर हमारे सकारात्मक प्रभाव पड़ता है। आप ये मत समझिएगा कि ये सब बिल्कुल ही अर्थहीन है, इनका कोई मतलब नहीं है, क्योंकि ग्लोबल वार्मिंग बढ़ती चली जा रही है, सब चीजें नष्ट होती चली जा रही हैं, तो इसका फिर क्या अर्थ रह गया? यहां मैं विशेष रूप से आपको एक डेटा बताना चाहूंगा। एक ऑर्गेनाइजेशन है, हो सकता है कि अखबारों में आज आपको इस ऑर्गेनाइजेशन के बारे में पढ़ने को भी मिले, IUCN। खासकर ऐसे स्टूडेंट जो खुद ही सिविल सर्विस की तैयारी कर रहे होते हैं वो खासकर इन शब्दों से चूक जाते हैं, उन्हें पता नहीं लगता कि ये वास्तव में एक इम्पॉर्टेंट इंस्टीट्यूशन है। उनको ध्यान में रखते हुए मैं बताना चाहूंगा कि IUCN एक बहुत इम्पॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है जिसका फुल फॉर्म है इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर, IUCN। 1948 से यह संस्था काम कर रही है, कितनी पुरानी है आप सोच करके देखिए। इसका जो मुख्य काम है वह है कि पर्यावरण से संबंधित जो डेटा होते हैं उनको गैदर करती है, उनका एनालिसिस करती है, पर्यावरण से संबंधित रिसर्च करना, रिसर्च में मदद करना, इससे पर्यावरण को बचाने के लिए जो प्रोजेक्ट होने चाहिए, परियोजना, उन पर काम करना, लोगों के बीच जाकर के पर्यावरण की चेतना पैदा करना, उन्हें एजुकेट करना, ये सब इस संस्था के काम हैं। आज एक अखबार में मुझे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डेटा पढ़ने को मिला, मैं खासकर वो डेटा आपके सामने रख रहा हूं कि ये जो संस्था है IUCN, इसके पास एक लिस्ट है जिसमें एक रेड लिस्ट होती है। रेड लिस्ट का मतलब है कि वे प्रजातियां जो अब खतरे में है, उसमें भी कई सब उसके डिविजन्स हैं, उस पर मैं नहीं जा रहा हूं, लेकिन आपको बकायदे इसके बारे में जानकारी होनी ही चाहिए, आप अलग से उसे देख लेंगे। उसकी एक जो रेड डेटा बुक है उसमें कुल 142,500 प्रजातियां, सोच करके दे, 142,500 प्रजातियां उसके रेड डेटा बुक में हैं और उसमें से लगभग लगभग 40,000 प्रजातियां विलुप्त होने के कगार पर हैं, विलुप्त होने के कगार पर हैं। आप सोच करके देखिए, ऑलमोस्ट 28% के आसपास वो विलुप्त होने के कगार पर हैं। और बकायदे जो 900 प्रजातियां हैं, 900 प्रजातियां, वो तो विलुप्त ही हो चुकी हैं। आप जानते हैं कि जो पूरी की पूरी प्रकृति है किस तरीके से एक दूसरे से जुड़ी हुई है, और अगर उसमें एक भी प्रजाति विलुप्त हो जाती है तो कड़ियां टूट जाती हैं, और उसमें से 900 प्रजातियों का विलुप्त हो जाना अपने आप में बहुत बड़े खतरे की ओर संकेत कर रहा है। तो मुझे लगता है कि ये बहुत इंपॉर्टेंट डेटा है, लेटेस्ट डेटा है, और इसे आपको जानना ही चाहिए। दोस्तों, अगर कल के आपने रेडियो न्यूज सुनी हो तो उसमें हमारे रक्षा मंत्री जी ने एक शब्द का प्रयोग किया था, हाइब्रिड वॉरफेयर। इंग्लिश के स्टूडेंट तो शायद इसे समझ लेते हैं, या यूं कह लीजिए कि उन्हें दूसरे रूप में इसके बारे में जानकारी मिल जाती है, लेकिन हिंदी के स्टूडेंट्स के लिए हो सकता है कि यह शब्द नया हो, हाइब्रिड वॉरफेयर। हाइब्रिड का मतलब आप जानते हैं, वर्ण संकर जैसे होता है, संकर कई चीजों का मिला जुला, वॉरफेयर या वार भी आप कह सकते हैं, एक ऐसा युद्ध जो कई को मिला करके किया जा रहा है। जब हम सामान्यतः युद्ध की बात करते हैं तो क्या है, उसमें हथियार और सैनिक ही होते हैं, लेकिन आजकल अब हाइब्रिड युद्ध का समय आ चुका है। उसमें आप यूं कह लीजिए कि सोशल मीडिया का भी सहारा लेते हैं, आप डिप्लोमेसी का भी सहारा लेते हैं, आप अफवाहों का भी सहारा लेते हैं, इस तरह से ढेर सारी चीजों को मिला करके आप एक युद्ध कर रहे होते हैं, उसे कहा जाता है हाइब्रिड वॉरफेयर। मुझे लगा कि इस शब्द की भी आपको जानकारी होनी चाहिए ताकि आप इसका उपयोग सही समय आने पर आप कर सके। दोस्तों, आज मैंने आपको बिजनेस स्टैंडर्ड का एक आर्टिकल प्रोवाइड किया है, एडिटोरियल कमेंट है बेसिकली, वो डिजिटल बैंकिंग को लेकर के है, वो कि किस तरह से समावेशन के लिए डिजिटल बैंकिंग की बात कही जा रही है कि देश में 75 ऐसे बैंक होंगे जो पूरी तरह से डिजिटली काम करेंगे। यह एडिटोरियल कमेंट आप जरूर पढ़िएगा, और जब आप एडिटोरियल कमेंट पढ़ेंगे तो उसमें आपको बैंकों के कुछ प्रकार पढ़ने को मिलेंगे, डिटेल में नहीं दिए हुए हैं, लेकिन मैं अपनी तरफ से आपको सजेस्ट करूंगा। जैसे उसमें शब्द आपको मिलेगा अधिसूचित वाणिज्यिक बैंक, शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक जिसे हम कहते हैं, आपको मालूम होना चाहिए कि यह क्या होता है। फिर आपको मिलेगा NBFC जिसका फुल फॉर्म है नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी, आपको ये मालूम होना चाहिए कि ये कंपनी किस तरीके की होती है। फिर आपको मिलेगा क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, फिर आपको मिलेगा भुगतान बैंक, ये बैंकों के प्रकार हैं, और आपको इनकी अच्छी जानकारी होनी चाहिए कि इसका कहने का क्या मतलब है, तब आप इकोनॉमिक्स पर अच्छी तैयारी कर सकेंगे। फ्रेंड्स, अब मैं आता हूँ आज के मुख्य विषय पर, सिविल सर्विस की भूमिका। यह सीधे सीधे आपके सिलेबस में है, और आप सच पूछिए तो यही बनने जा भी रहे हैं। कल सिविल सर्विस डे था, और उस पर प्रधानमंत्री जी ने अपना उद्बोधन भी दिया है, कुछ सिविल सर्विसेज के ऑफिसर्स को अवार्ड भी दिए गए हैं, यानी उनकी डिटेल्स आज अखबारों में है, आप पढ़ लेंगे। सबसे इम्पोर्टेंट बात देखिए जो प्रधानमंत्री जी ने जोर दिया है, वो ये है कि जो हमारे सिविल सर्वेंट हैं उन्हें राष्ट्रीय एकता और अखंडता पर विशेष ध्यान देना चाहिए, और इसे कोई समझौता नहीं किया जाना चाहिए बल्कि इसे मजबूत बनाना चाहिए। अब सवाल ये उठता है कि जो सिविल सर्वेंट हैं उनके राष्ट्रीय एकता और अखंडता से क्या लेना देना हो सकता है। देखिए, एक तो आप सीधे सीधे ये सोच ही सकते हैं कि जब देश में इस तरह से कोई भी अलगाववादी, मान लीजिए कि घटना घटित होती है या इस तरह के प्रचार प्रसार होते हैं, तो कानून और व्यवस्था उसे नियंत्रित कर सकती है, जिसमें हमारे IAS ऑफिसर्स हैं, IPS ऑफिसर्स हैं, तो बकायदे वो उनके नियंत्रित करके देश की एकता और अखंडता को मजबूत बनाए रख सकते हैं। लेकिन ये सामान्य सी बात है। जो सबसे इम्पॉर्टेंट बात है, जिधर प्रधानमंत्री जी का इशारा था, वो तो अपने कामों के द्वारा कह ही रहे हैं। एक जगह उन्होंने कहा है कि हमारे देश के लोगों की सेवा करना, उन तक पहुंचना, उनकी आकांक्षाओं को पूरा करना सबसे बड़ी प्रेरणा का स्रोत होना चाहिए सिविल सर्वेंट के लिए। और आप देख रहे हैं कि किस तरीके से जितने भी डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट हैं वो ब्यूरोक्रेट्स के ही हाथ में हैं। नो डाउट कि पॉलिटिशियंस पॉलिसी बनाते हैं, लेकिन इम्प्लीमेंट करने की जिम्मेदारी हमारे सिविल सर्वेंट की ही होती है। मैं ये बताने की जरूरत नहीं समझता हूं कि सिविल सर्वेंट जो है वो एग्जीक्यूटिव का पार्ट होता है, और आप ये बात जानते होंगे कि जब हम एग्जीक्यूटिव की बात करते हैं तो वो दो तरह की एग्जीक्यूटिव की बात होती है। पहला पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव आप कह सकते हैं, जिसे अस्थायी कार्यपालिका कहा जाता है। जैसे हमारे मंत्री हैं तो हमारे एग्जीक्यूटिव के टॉप पर है हमारे मंत्री, लेकिन वो अस्थायी कार्यपालिका के हिस्से हैं, वो परमानेंट नहीं है, जबकि जो सिविल सर्वेंट हैं वो स्थायी कार्यपालिका के हिस्से होते हैं। और संविधान ने ये शक्ति दी हुई है, या आप यूं कह लीजिए उनकी सुरक्षा के लिए, कि उन्हें आसानी से हटाया नहीं जा सकता। और मैं यहां विशेष रूप से बताना चाहूंगा कि यदि ट्रांसफर किया जाता है तो उसे नौकरी से हटाना नहीं कहा जाता, न ही उसे दंड माना जाता है। अब ये बात अलग है कि हम सब सामान्यतया ट्रांसफर पोस्टिंग को भी दंड और पुरस्कार के रूप में लेते हैं, भौतिक दृष्टि से अगर बात करें तो इस तरीके से संविधान ने बकायदे सिविल सर्वेंट को बहुत ज्यादा प्रोटेक्शन दे रखी है, और यह प्रोटेक्शन उसे शक्ति प्रदान करती है कि वो किसी व्यक्तिगत हित से ऊपर उठ करके, यहां तक कि राजनीतिक दलों के भी हितों से ऊपर उठकर, यदि उनके हित हमारे राष्ट्रीय हित से मेल नहीं खा रहे हैं तो बकायदे वह निर्णय ले सकती है, वो काम कर सकती है, हमारी जो स्थायी कार्यपालिका है वो। लेकिन सवाल यह है कि क्या हम ऐसा कर पाने में सक्षम हैं और ऐसा कर पाते हैं, यह एक बहुत बड़ा चैलेंज है। हमारे प्रधानमंत्री जी ने ध्यान दिया होगा आपने, ये भी उन्होंने कहा है कि 25 साल के लिए जो जिले हैं उनकी योजनाएं बनानी चाहिए, और सभी सिविल सर्वेंट को यह सोचना चाहिए कि मैं अपने जिले को देश का सर्वोत्तम जिला बनाऊंगा, ये बातें उन्होंने कही हैं। अब आप देखिए कि यहां प्रॉब्लम क्या आती है। मैं खासकर कल जो उद्बोधन है उनको लेकर के ही आपके सामने एक छोटी सी एनालिसिस पेश कर रहा हूं, बाकी चीजें तो आप किताबों में बड़े आराम से पढ़ लेंगे। बकायदे कोर्ट ने यह कहा है कि कुछ ऐसे अधिकारी होते हैं जिनका टेन्योर फिक्स होना चाहिए, जिसमें कलेक्टर, यानी कलेक्टर अगर एक जिले में पोस्टिंग उसकी की जाती है कलेक्टर के रूप में, तो फिर उसका टेन्योर फिक्स हो कि भाई 3 साल तक ये यहां रहेगा, 5 साल तक ये यहां रहेगा, SP यहां रहेगा। ठीक इसी तरह से जो डायरेक्टर जनरल पुलिस है उसका टेन्योर फिक्स हो, जो चीफ सेक्रेटरी है उनके टेन्योर फिक्स हो, ये बात कही गई है, लेकिन इसका पालन नहीं हो रहा है। स्टेट में बकायदे सिविल सर्विस एक बोर्ड बना दिया गया है जो इस तरह के ट्रांसफर पोस्टिंग पर निगाह रखेगा, निर्णय लेगा, लेकिन यह भी सिस्टम अच्छे तरीके से काम नहीं कर रहा है। अब सवाल ये उठता है कि अगर किसी कलेक्टर के किसी जिले में पोस्टिंग होती है और वह योजना बनाता है कि मैं अपने जिले को बेस्ट जिला बनाऊंगा, और पता लगता है कि अभी उसे 6 महीने भी नहीं हुए हैं कि वहां से उसका ट्रांसफर हो जाता है, तो ऐसी स्थिति में न तो उसके अंदर कोई मोटिवेशन रहता है कि वो अपने जिले के लिए कोई बड़ा काम करे, और हमेशा वो एक तरह की मानसिकता से गुजरता रहता है कि पता नहीं वो कब तक यहां है। यदि उसके टेन्योर को स्थायी कर दिया जाए तो डेफिनेटली वह ज्यादा लगकर काम करेगा, उसके अंदर एक प्रेरणा रहेगी कि नहीं, मेरे पास 3-5 साल का समय है और इन 3-5 साल के बीच में मैं कुछ करके दिखाना चाहता हूं, और उसे कॉन्क्रीट शेप वो दे भी सकेगा। तो ये कुछ समस्याएं हैं सिविल सर्विस से जो जुड़ी हुई हैं। दोस्तों, मैं चाहूंगा कि आप इन सब पर विचार करें, और जब भी आपको अखबारों में इस तरह की कुछ बातें पढ़ने को मिलती हैं तो प्लीज आप उन्हें नोट भी कर लें कि सिविल सर्वेंट जो हमारे हैं वो क्या क्या नए नए काम कर रहे हैं। उदाहरण के तौर पर कल के ही रेडियो न्यूज में बताया गया है कि दतिया जिले को एक पुरस्कार दिया गया है, मध्य प्रदेश का सबसे छोटा जिला है, और पुरस्कार इस बात के लिए दिया गया है कि वहां जो कुपोषण की समस्या है उसको बहुत अच्छे से हैंडल किया गया, और उन्होंने एडॉप्टिंग का एक सिस्टम मॉडल तैयार किया, यानी कि जो बच्चे कुपोषित हैं उन कुपोषित बच्चों को एडॉप्ट कर लें लोग, संस्थाएं, और फिर उनका कुपोषण दूर किया जाए, तो एक बहुत अच्छा मॉडल है। इसी तरह से आज के दैनिक भास्कर का जो एडिटोरियल है मजदूरों के ऊपर, आप देखिए कि उसमें भी एक सिविल सर्वेंट, महाराष्ट्र जिले के एक सिविल सर्वेंट है, उन्होंने एक ऐप तैयार किया, और उसके अंतर्गत ये था कि जो भी महाराष्ट्र के जो मजदूर हैं और उनके जो परिवार के बच्चे हैं, अगर वो कहीं दूसरी जगह काम करने चले जाते हैं अपने परिवार सहित, तो सीधी सी बात है कि उनको फिर जो बाल विकास योजना है, समेकित बाल विकास योजना, इसका लाभ नहीं मिल पाता है। तो उस ऐप के जरिए आप उन्हें बकायदे ट्रैक कर सकते हैं और उनको उस राज्य में वह लाभ दिलाया जा सकता है, और वहां के विभाग से बात करके बकायदे इस तरह का लाभ उन्हें दिलाया जा रहा है। तो इस तरीके से ये जो नए नए इनोवेशन है डेफिनेटली सिविल सर्वेंट करते हैं और उनका बकायदे लाभ समाज को मिलता है। तो दोस्तों, इस तरह की बातें जब भी आपको पढ़ने को मिलें, बेहतर होगा कि आप उन्हें नोट करते चले जाएं, इससे आपके आंसर राइटिंग में एक नई चमक और उस समसामयिकता की स्थिति भी पैदा हो सकेगी। तो फ्रेंड्स, मुख्य विषय के बारे में बस इतना ही। न्यूज़पेपर्स के क्लिपिंग्स आप सबको प्रोवाइड कर रहा हूं। हमारी ऑफलाइन क्लासेज जो 7 से 21 अक्टूबर के बीच होने वाली हैं, उसके लिए एक स्टूडेंट ने अपना रजिस्ट्रेशन कराया है, इनका नाम है शैलेंद्र भारती। आप उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ जिले के गांव प्योर देवराम के रहने वाले हैं। तो शैलेंद्र, आपका बहुत बहुत स्वागत है। ईमेल लिखने वाले मित्रों को धन्यवाद देता हूं, और इन्हीं में से 2 दोस्तों के नाम हैं संतोष कुमार देवांगन चांपा छत्तीसगढ़ से और भास्कर शर्मा। आप दोनों का बहुत बहुत आभार। और दोस्तों, इसी के साथ ही आज के इस डेली ऑडियो लेक्चर को अब यहीं समाप्त करता हूं। 2 दिनों के बाद आप सबसे फिर मुलाकात होगी, तब और बातें होंगी। तब तक के लिए मुझे इजाजत दें। नमस्कार।